नमस्कार दोस्तों, मोबाइल ने सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है किसान आंदोलन। देश के अनेक हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर अब दिल्ली कूच सहित अन्य अपने अपने प्रदेशों में धरना प्रदर्शन और दिल्ली कूच और की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में किसान न पहुंचे इस हेतु सड़कों पर बैरिकेटिंग, कटीली तारे सहित अन्य व्यवस्थाएं बाधा में सड़कों पर लगाई गई है। वहीं प्रशासन भी सड़कों पर आकर किसानों को रोकने की जद्दोजहद कर रहा है। क्या किसानों को रोकना उनकी मांगों को लेकर चल रही चर्चा अभी तक बेनतीजा ही रही है? आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जो है। सर, मोबाइल में स्वागत है आपका।
जी योगेश भाई, नमस्कार आपको भी।
सर, जो किसान आंदोलन को लेकर सड़कों पर बैरिकेटिंग और उन्हें रोकना, कहाँ तक सही देखते हैं सर लोकतंत्र में?
यह जो वर्तमान की सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, और पिछले साल भी जब आंदोलन हुआ था तो इसी प्रकार का व्यवहार किया गया था, यह केवल किसानों को नहीं रोका जा रहा है बल्कि हिंदुस्तान के आत्मा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जो दंड प्रावधान और जो उनको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है, यह हिंदुस्तान की आत्मा पे चोट पहुंचाया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी तक लोकतंत्र को कुचला जाता था, परंतु सरकार ने किसानों के साथ जो व्यवहार कर रही है उसके साथ साथ वह लोकतंत्र को मिटा देना चाहती है। जब हम संविधान को देखते हैं, जो संविधान हम लोगों का मार्गदर्शक है, हम लोगों का जीवन है, जो रक्षक है हम लोगों का, वह संविधान कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। और इसी के तहत आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर को चिन्हित किया गया है कि देश की आवाम वहां पे जाकर के अपनी आवाज को उठाएगी, अपने न्याय की मांग करेगी। और किसान भी वही कर रहे हैं, परंतु यह सरकार उनकी आवाजों को दबा रही है, उनकी आवाज को सुनना नहीं चाह रही है, इसलिए कि किसानों की मांग जायज है, इसलिए सरकार उनकी आवाजों को दबा रही है। और एक प्रकार से यह तानाशाही रवैया अपना करके किसानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आज जो किसानों ने निर्णय किया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, सरकार को यह चाहिए था कि उनसे बात करे। मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी भेजते हैं बात करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकाल पाते मंत्री। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मंत्री अपनी नीति अपनाना चाह रहे होंगे बात करने के लिए, दूसरा अड़ियल रवैया अपना रहे होंगे कि हमें किसानों की बात नहीं मानना है। जबकि देखा जाए तो किसानों की जेन्युइन दो मांगे, एक तो हमारी एमएसपी लागू कर दो और दूसरी की हमारे जो कर्जे है उसको माफ करो और बाजार का भाव हमें दे दो। परंतु यह सरकार पिछले साल भी यही कही थी कि हम आपके मांग को मान ले रहे हैं, हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, और आज तक नहीं बनाई है। तो और उसके बाद भी यह सरकार किसानों के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है जैसे अपने देश के किसान नहीं कोई आक्रमणकारी है जो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो यह एक प्रकार के लोकतंत्र को, संविधान को और भारत की आत्मा को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के किसान अपने मेहनत के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को जिंदा रखने का काम किए हैं।
जी सर। सर, क्या सर किसानों की मांगों का सार्थक समाधान आखिर क्यों नहीं निकाल पा रही है सरकार, और इतने दौर की बात होने के बावजूद भी इसका परिणाम कब?
सरकार की मंशा नहीं है। सरकार जो बैठी है यह सोच ली है कि हम इनकी मांग को पूरा करें या ना करें, हम चुनाव जीत जाएंगे। सरकार एक तरह चुनाव जीतने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ योगेश भाई, जहां पे सरकार चुनाव नहीं जीत रही है वहां पे विधायकों को खरीद रही है, सरकारों को खरीद करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, अपनी सरकार बना रही है। यह जो सरकार है पूरी तरीके से तानाशाहीपूर्ण नीति को अपनाई है। इसको जनता जनार्दन और किसान मजदूर मेहनतकश लोगों से नहीं मतलब है, इसको सत्ता से मतलब है। और यह देख लिए कि सत्ता इधर से नहीं आएगा तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके हम सत्ता को लाएंगे। तो यह सरकार का अड़ियल रवैया है जिसके कारण किसानों के समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, जबकि समस्या का समाधान निकालना बहुत आसान है। और यह एमएसपी हमेशा से रही है, उसको कानूनी रूप किसान मांग रहे हैं, उसको दे देना चाहिए। दूसरा कि जो कर्जा है, संपूर्ण कर्जा एक बार पूरे देश में किसानों का माफ कर देना चाहिए, उसके बाद एक इनको नीति बनाना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो यह तो सरकार नहीं कर रही, यह तो देख रहे हैं कि हमें किस राज्य में कितना फायदा है उस हिसाब से वादा करते जाते। तो आप देश भर में सरकार रेवड़ियां तो बांट रही है, परंतु जब किसान अपनी वास्तविक मांग को मानने का प्रयास कर रहे हैं, मांग रहे हैं सरकार से, सरकार दे नहीं रही बल्कि उनको परेशान कर रही है, और उसमें भी एक चाल चलने का सरकार प्रयास कर रही होगी भाई। आप देखिए कि सरकार अपने मंत्रियों को भेजती है कि आप जाइए बात करने के लिए, लेकिन मंत्री लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो इसके माध्यम से सरकार जनता में मैसेज देना चाह रही कि देखिए हम तो बात कर रहे हैं लेकिन किसान मानने के लिए रेडी नहीं है। परंतु सच्चाई तो यह है कि मंत्री अपने शर्तों पे किसानों के साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, उसी प्रकार से वो किसानों से भी अपने मन की बात करना चाहते हैं, परंतु किसानों के मन की बात को नहीं सुनना चाहते और किसानों की जन की बात के और जन की बात को नहीं सुनना चाहते। यह एक प्रकार से सरकार का अड़ियल रवैया है, और अड़ियल रवैया रहेगा तो हल नहीं निकल सकता है। जबकि इन्हें तो समझना चाहिए कि वही किसान है जो हमको जिंदा रखे है, देश को जिंदा रखे है, और इन्हीं किसानों के द्वारा उत्पादित किए गए अनाज के भरोसे यह सरकार जिंदा है। उसके उदाहरण योगेश भाई, यह सरकार 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने, प्रति परिवार 80 करोड़ लोगों को देने का काम कर रही है, तो अनाज आ कहां से रहे? यह अनाज तो यही किसान उत्पादित करता है ना। फिर भी सरकार किसानों के महत्व को नहीं समझ रही है, उनके अधिकार, उनके नीति और उनके विचारों को दबाने का काम कर रही है।
जी सर, सर देश के अन्य शहरों में भी किसानों को इस आंदोलन को रोकने के लिए जेल भेजने जैसी स्थिति भी आ गई है, इसका क्या कारण देखते हैं?
इसका सीधा सीधा कारण है कि सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है, सरकार को जनता में विश्वास नहीं है, सरकार को पूंजी तंत्र, देश के बड़े लोग, देश के पैसे वाले लोग, देश के माफिया प्रकार के लोग, और देश को लूटने वाले लोग, और देश को पैसे से चलाने वाले लोगों में विश्वास है। यह सरकार यह सोच रही है कि हमारे पास अजेय सत्ता है, इसको बदली नहीं जा सकती है। यह सरकार यह सोच रही है कि हम चुनाव नहीं हार सकते क्योंकि हमारे पास नाना प्रकार के हथकंडे, उसको अपनाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सरकार का सिर्फ और सिर्फ रवैया अड़ियल रवैया है, सरकार की तानाशाहपूर्ण नीति है जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही, किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। तो ठीक है, हमारे किसान दिल्ली नहीं जाएंगे लेकिन वो जहां रहेंगे वहीं से प्रदर्शन करेंगे, और यह सरकार के सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। यदि सरकार नहीं सुधरती है तो लोकतंत्र की अपने विचारों और कर्मों से जो हत्या करने का प्रयास कर रही है वह उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।
जी सर, सर प्रदेश में भी किसानों को इस आंदोलन से रोकने के लिए जेल डाल दिया गया। मोबाइल वाणी से बात करते हुए डॉक्टर सुनीलम ने जानकारी दी है कि प्रदेश में भी भोपाल हो, छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, अन्य जगहों पर किसानों को जेल में डाल दिया गया है। सर तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर
देश भर के किसानों को जेल में डाला जा रहा है, केवल सुनीलम को ही जेल में नहीं डाला जा रहा है। और सुनीलम जी लड़ते रहते हैं, अब कैसे लड़ते हैं क्या जाने, वो जाने, उनका वो आंदोलन है वो समझते रहे। हम तो बात किसानों का कर रहे हैं कि किसानों के विचारों की, किसानों की मांग को सरकार को नहीं दबाना चाहिए, जबकि सरकार को चाहिए कि उनसे स्वतः आगे आकर के बात करे। पिछले साल का आपको स्टेटमेंट याद होगा योगेश भाई कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बहुत संवेदनशील है, जो मन की बात को करते हैं, जनता की बात को करते हैं, हमेशा जनता के प्रति सोचते हैं, उन्होंने कहा था कि हम किसानों से सिर्फ एक फोन की दूरी पर है। परंतु हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि एक साल हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी फोन क्यों नहीं कर रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों से क्यों नहीं मिल पा रहे। जिस प्रकार से मणिपुर में प्रधानमंत्री जी गए नहीं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहे, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी स्वतः किसानों से नहीं मिलना चाहते और उस पर स्वतः चर्चा नहीं करना चाह रहे। तो यह एक प्रकार के गुमराह करने की नीति है प्रधानमंत्री जी की। जबकि प्रधानमंत्री जी अभी 22 जनवरी को पूरे विश्व के अंदर राम राज्य का संदेश देने का काम किए। प्रधानमंत्री जी अगर राम राज्य का संदेश दे रहे हैं तो राम राज्य में तो यह था कि राम राज्य का जो राजा थे भगवान रामचंद्र जी, वो अपनी जनता की बात को सुनते थे, जनता के साथ बिछावन पर बैठते थे और उनकी बातों को सुनते थे, सहमति और असहमति को सुनते थे, असहमत होने वाले व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहते थे, उसके लिए बैरिकेटिंग नहीं कराते थे, उसकी भी बात को सुनते थे। और तुलसीदास जी ने उसी के संबंध में लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ना ही तीनों व्यापा, यानी राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो यह बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने अंदर चरितार्थ करना चाहिए, क्योंकि वह कह रहे हैं कि हम राम राज्य ला रहे, और राम राज्य ला रहे तो हिंदुस्तान की आत्मा को दुखी क्यों कर रहे, हिंदुस्तान की आत्मा के रास्ते में कील ठोकने का काम क्यों कर रहे, बैरिकेटिंग क्यों लगा रहे। तो यह सीधा सीधा एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में अंतर को दिखाता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव उसी समय खुश रहेगा जब मेहनत करने वाले किसान मजदूर, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे खुश रहेंगे। तो यह प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि इन सबको खुश रखे और लोगों से बात करे। जेल में डालने से हल नहीं निकलने वाला है, जबकि जेल में डालेंगे तो इनकलाब और मजबूत होगा।
जी सर, इसी बात को लेकर अभी मेरे साथ जो एक विचार आया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, तो सर
जी
सड़कों पर उन्हीं के बच्चे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं और वे ही आंदोलन कर रहे हैं। सर जय जवान जय किसान का जो नारा है कितना सार्थक देखते हैं कहां वर्तमान परिवेश को लेकर?
आज जय जवान भी परेशान है और जय किसान भी परेशान है, परंतु दुर्भाग्य देखिए योगेश भाई की, जब चुनाव आता है तो यही जवान और यही किसान अंधा होकर के एक ही सरकार को वोट देने का काम करते हैं और उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो पूंजीपतियों के इशारे पे चलती है, और वही सरकार आज देश के नौजवान और किसानों को परेशान कर रही है। हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वह कहते थे कि बदलाव के 3 साधन है, जेल, फावड़ा और मतदान। तो अब मतदान के माध्यम से बदलाव होगा। लोगों को चाहिए कि जब चुनाव के दिन हिस्सेदारी करने जाए, जय जवान और जय किसान का नारा लगाए और लोग जाति धर्म मजहब पंथ से ऊपर उठ करके न्याय और अन्याय के नाम पर बटन दबाए। इसलिए बटन दबाए कि किसानों की मांग पूरी हो, इसलिए बटन दबाए कि हर विद्यार्थी को शिक्षा मिले, इसलिए बटन दबाए कि हर नागरिक को चिकित्सा मिले, और इसलिए बटन दबाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार और सप्त क्रांति का सिद्धांत समाज में लागू हो, जहां से भेद मिट जाए, राजा और रंक की दूरी समाप्त हो जाए और किसी प्रकार की अपार सत्ता और अजेय सत्ता अपने ऊपर राज न करे।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर किसान आंदोलन और किसानों को आ रही सड़कों पर जो प्रशासन द्वारा बाधा लगाई जा रही है, साथ ही उनकी मांगों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
जी मोबाइल सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।